We greet each and every one of you, and we welcome you in the name of Jesus Christ, of our Lord and Savior.
हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को हम अभिवादन करते हैं और इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं.
We are so happy you could join us once again for this program that we were also excited in writing it.
और सच में हम बहुत ही खुश हैं कि आप इस प्रोग्राम में जुड़े हैं. इस प्रोग्राम को लिखते हुए हम भी बहुत ही उत्साहित हुए हैं.
You would have noticed in the last 3 episodes we discussed in great detail about the great second coming of Jesus Christ.
आपने इस बात को देखा होगा कि पिछले 3 एपिसोड में हमने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बहुत ही विवरण से देखा है.
Which is very important and also is a current issue in our Christian walk.
और ये तो हमारे मसीह जीवन में या मसीह चाल चलन में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा विषय है.
Now, we only look at what the Bible says. Definitely it says that Jesus is coming back again.
और बाइबल जो कहती है उसे हम देखते हैं और निश्चय बाइबल कहती है कि यीशु मसीह वापस आएगा.
We have been talking about the second coming of Jesus Christ.
हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में चर्चा कर रहे हैं.
For over the past 2000 years.
पिछले 2000 साल से.
Most of us are not at all serious and many of us let it happen and we can face it.
और बहुत से लोग जो है इसके बारे में गंभीर नहीं है. वो कहते हैं कि चलो होने दो इसे, उसके बाद में देखेंगे.
The second coming of Jesus Christ is very important because it's exactly and clearly what the Bible teaches.
यीशु मसीह का दूसरा आगमन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बाइबल इसके बारे में हमें बहुत ही स्पष्ट रीति से और बहुत ही साफ तरीके से बताती है.
To doubt the reality of the second coming is like questioning the credibility of the word of God.
और निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में संदेह करना मतलब परमेश्वर के वचन के महत्व के ऊपर में सवाल उठाना जैसा है.
Another important reason is that the second coming is important because Jesus himself talked about it and promised that he definitely will come back.
और दूसरा आगमन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वयं यीशु मसीह ने उसके बारे में प्रतिज्ञा की है और खुद उसने इसके बारे में बहुत सी बार बताया भी है.
The second coming of Jesus Christ is our hope, our confidence that God is in control over all things and he is faithful.
और दूसरा आगमन तो हमारी आशा है, हमारा भरोसा है कि परमेश्वर सारी बातों के ऊपर में महान है और वो विश्वास योग्य है.
To his word and to the promises that he gave the people.
अपने वचन के लिए और उसने अपने लोगों को जो प्रतिज्ञा दी है उसके लिए.
Also, I mentioned earlier the second coming is important because it will come at a time when there is a great need of peace and tranquility.
और निश्चय मैंने जैसे कि पहले आपको बताया है कि दूसरा आगमन तो तब होगा जबकि शांति और स्थिरता के लिए बहुत बड़ी जरूरत होगी.
Just I want to remind you at the time of the second coming the world will be devastated.
और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि दूसरे आगमन के समय संसार पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा.
Millions of people will be perishing.
और लाखों लोग उस समय नाश होते रहेंगे.
And the world will be controlled and ruled by the most evil person in all history.
और इस संसार पर पूरे मनुष्य के इतिहास में जो सबसे दुष्ट आदमी है वो व्यक्ति इस पर राज्य करेगा.
So let's see what the Bible has to say about it.
और आइए देखते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है.
When we read Zechariah chapter 12 verse 9.
और जब हम जकरिया अध्याय 12 वचन 9 पढ़ते हैं.
It is clear that many countries will be against Jerusalem.
तो ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि बहुत से देश यरूशलेम के विरुद्ध में होंगे.
But definitely God's protection will be there.
लेकिन निश्चय ही परमेश्वर की सुरक्षा वहाँ पर होगी.
Zechariah continues to write in the 10th verse that people who have pierced and crucified Jesus Christ, they will see him again.
और जकरिया यहाँ पर वचन 10 में बहुत ही स्पष्ट कहता है कि जिन लोगों ने उसे भेदा वो उसे वापस देखेंगे.
And what do you think they will do?
और आप क्या सोचते हैं कि वो क्या करेंगे?
They will mourn.
वो शोक करेंगे.
When Jesus Christ came as the Son of God,
और जब परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु मसीह आया,
they rejected and killed him.
उन्होंने उसका इनकार किया और उसकी हत्या कर दी.
But when he returned in the second coming,
लेकिन जब वो अपने दूसरे आगमन में वापस आएगा,
it is mentioned in the Bible that they will look at him and to begin mourning.
और बाइबल में इस तरह से लिखा है कि वो उसे देखेंगे और वे रोते और पीटते रहेंगे.
Pay careful attention to what the word says.
परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस बात की ओर जरा आप ध्यान से देखिए.
They will mourn for him.
वो उसके लिए भारी शोक करेंगे.
As one mourneth for his only son.
जैसा पहलौठे के लिए किया करते हैं.
And shall be in bitterness of him.
और उसके बारे में वो कड़वाहट रखेंगे.
As one that is in bitterness for his firstborn.
जैसे कि वो अपने पहलौठे के लिए करता है.
This prophecy was told by Zechariah, who was the son of Berakah.
और यहाँ पर ये जो भविष्यवाणी है, ये जकरिया जो कि बराका का पुत्र था, उसके द्वारा ये की गई है.
Who was the son of Iddo?
और वो इदियो का पुत्र था.
Zechariah was a person, prophet, who encouraged the people with visions of the future.
और जकरिया तो ऐसा भविष्यवक्ता था, जो भविष्य के दर्शन को देखकर लोगों को प्रोत्साहित किया करता था.
He started to tell the prophecies in 520 BC.
वो ईसवी सन पूर्व 520 में इन भविष्यवाणी को किया करता था.
We look at the book of Ezra that tells us in Ezra 5:1.
और इज़रा अध्याय 5 वचन 1 में जब हम देखते हैं तो ये कहता है,
Zechariah promised to the Jews living in Judah and Jerusalem.
यहाँ पर जकरिया जो है वो तो यहूदा और यरूशलेम में जो यहूदी रहते थे उनसे नबूवत करके कहने लगा.
In Ezra 6:14, Ezra tells us the people prospered as Zechariah's preaching and finished the building the second temple.
और इज़रा 6:14 में ये कहता है कि जब जकरिया वहाँ पर भविष्यवाणी करता था, उस समय लोग जो है वो तो संपन्न होते चले गए और उन्होंने भवन निर्माण का काम भी पूरा किया.
Just to remind you of an important fact here.
यहाँ पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद दिला दूँ.
The prophets of those days foretold exactly what is going to happen in the future.
उस समय के जो भविष्यवक्ता थे उन्होंने बिल्कुल सटीक तरीके से बताया कि भविष्य में क्या होने वाला है.
And they were fulfilled.
और वो सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई.
There was another very important prophet and he was called Amos.
और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा भविष्यवक्ता था जिसका नाम था आमोस.
He was a sheep breeder.
वो तो भेड़ों की रखवाली करना, भेड़ों को पैदा करने वाला था.
And he was a caretaker of the sycamore trees.
और साथ साथ में वो गुलर के पेड़ों की देखभाल करने वाला था.
He belonged to the kingdom of Judah.
और वो यहूदा के राज्य का था.
He was commissioned by God to go to the north of Samaria.
और उसे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि वो सामरिया के उत्तरी भाग में जाए.
And prophesied against the kingdom of Israel.
और इसराइल के राज्य के विरुद्ध में वो वहाँ पर भविष्यवाणी करते चले जाए.
Amos was a stern prophet of righteousness and never compromised on justice.
और आमोस जो है वो तो धार्मिकता के बारे में बहुत ही सटीक ऐसा भविष्यवक्ता था और न्याय के बारे में उसने कभी कोई समझौता नहीं किया.
Amos ministered during the time of King Uzziah of Judah.
और आमोस जो था वो तो उज़िया जो यहूदा का राजा था उसके दौरान में जीवित था, उसने उस समय सेवकाई की.
Who ruled in 790 BC.
और राजा उज़िया जो था वो तो 790 ईस्वी सन पूर्व में राज्य करता था.
And to 739 BC.
790 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 739 ईस्वी सन पूर्व तक उसने राज्य किया.
And to the king Jeroboam second of Israel.
और फिर उसके बाद में राजा यरीबोम जो कि इसराइल के ऊपर था, राजा यरीबोम दूसरा राजा वो इसराइल के ऊपर राज्य कर रहा था.
He ruled in 793 to 753 BC.
उसने ईस्वी सन पूर्व 793 से लेकर ईस्वी सन पूर्व 753 तक राज्य किया.
If we read the book of Amos chapter 9 verses 11 to 15.
अगर हम आमोस की किताब अध्याय 9 वचन 11 से 15 तक पढ़ते हैं.
He prophesizes about the country of Israel.
वो यहाँ पर इसराइल देश के बारे में भविष्यवाणी करता है.
If we read the 11th verse, we see in that day, he says, will I raise up the tabernacle of David.
और यहाँ पर अगर हम वचन 11 पढ़े तो ये कहता है कि उस समय या उस दिन मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूँगा.
That is fallen and close up the breaches thereof.
जो कि गिर चुकी है और बड़े नाकों को सुधारूँगा.
And I will raise up his ruins.
और वो कहता है कि मैं उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा.
And I will build it as in the days of old.
और जैसे वो प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा.
From history we learn that Israel was a prosperous country.
और इतिहास से हम इस बात को सीखते हैं कि इसराइल जो है वो तो एक बहुत ही संपन्न ऐसा देश था.
At the time of King David.
राजा दाऊद के समय में.
And it continued so when King Solomon was their king.
और जब राजा सुलेमान उनका राजा था, उस समय भी बिल्कुल ऐसा ही चलता रहा.
During this period, the first temple was built.
और इसी समय के दौरान जो पहला भवन है, वो बनाया गया था.
That is in 950 BC.
यानी ये है 950 ईस्वी सन पूर्व में.
After his period, the kingdom was divided and slowly perished. And was actually ruined.
और उसके राज्य के बाद में जो राज्य था वो तो धीरे धीरे विभाजित हुआ और धीरे धीरे इसी तरह से बर्बाद हो गया.
Remember in 520 BC, King Nebuchadnezzar destroyed Jerusalem.
याद रखिए ईस्वी सन पूर्व 520 में राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को नाश कर दिया.
Then after the resurrection of Jesus Christ.
और फिर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद
Exactly after 40 years, that is in 70 AD.
बिल्कुल 40 साल के बाद में, यानी ईस्वी सन 70 में.
This country was completely destroyed by the Roman emperor called Titus.
ये देश जो है, वो तो रोमी राजा, रोमी सम्राट टाइटस के द्वारा पूरी तरह से नाश कर दिया गया.
It was a ruined country, nothing but a wilderness.
ये तो बर्बाद किया हुआ ऐसा देश था, उसमें जंगल को छोड़कर और कुछ भी नहीं था.
All the Jews who were there were scattered to different parts of the world.
और उस समय वहाँ पर जितने भी यहूदी थे, वो सब के सब संसार के अलग-अलग भागों में बिखर गए.
Suddenly, the declaration and establishment of the state of Israel.
और फिर अचानक उसके बाद में इस्राएल राज्य या इस्राएल देश के बारे में या उसकी स्थापना के बारे में घोषणा की गई.
Was proclaimed in 14 May. 1948.
और ये घोषणा 14 मई 1948 में हुई.
What was once in ruins today, the whole world talks about the small country.
और जो कि एक समय पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, आज पूरा संसार इस एक छोटे से देश के बारे में चर्चा करता है.
Which has gained great significance in the field of agriculture.
जिसने खेती किसानी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात हासिल करके रखी है.
Defense.
खेती किसानी और सुरक्षा
साइंस
विज्ञान
एंड टेक्नोलॉजी
और तकनीकी क्षेत्र में ये सबसे ऊंचाइयों में से एक देश है.
इट इज अमेजिंग टू सी हाउ सच अ स्मॉल कंट्री.
ये तो देखना बहुत ही अद्भुत बात है कि कैसा एक छोटा सा देश
कैन लीड द होल वर्ल्ड.
वो एक पूरे संसार की अगुवाई कर सकता है
इन मेनी एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी.
विज्ञान और तकनीकी के बहुत से क्षेत्र में वो सारे संसार की अगुवाई कर सकता है.
Israel gained all its importance after independence in the last 70 years.
पिछले 70 साल में जहाँ जब इसराइल आजाद हो चुका है, इस पूरे 70 साल में इसराइल ने अपने महत्व को फिर से वापस प्राप्त कर लिया है.
This is exactly what was foretold by the prophet Amos.
और भविष्यवक्ता जो आमोस था, उसके द्वारा बिल्कुल इसी तरह से पहले से ही बताया गया था.
It took 2,900 years for it to be restored. To his former glorious days.
उसके पहले के जो दिन थे, महिमा के दिन थे, उसी महिमा के दिन को वापस पाने के लिए लगभग 2,900 साल लग गए.
In 950 BC, it was prospering under King David and King Solomon, and today in 2017.
ईस्वी सन पूर्व 1950 में वो राजा दाऊद और राजा सुलेमान के राज्य के काल में बहुत ही संपन्न हुआ था, और आज भी सन 2017 में ये इतना ही संपन्न है.
Because the former glory has been restored.
क्योंकि उसकी जो पहले की महिमा थी, वो उसे वापस लौटा दी गई है.
So you see, all the prophecies foretold have been accurately fulfilled.
यानी आप देखते हैं कि इसके बारे में जो भी भविष्यवाणी पहले से बताई गई थी, वो जैसे के वैसे पूरी हो गई है.
Now this is the interesting part of this story about Israel.
इस्राएल की इस कहानी के बारे में यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है.
The fulfillment of prophecy regarding Israel is the key for the second coming.
इस्राएल के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी, उसकी परिपूर्णता यही तो मसीह यीशु के दूसरे आगमन की कुंजी है.
When Jesus entered Jerusalem from the Mount of Olives, as recorded in Matthew 21.
जैसे कि मत्ती अध्याय 21 में यीशु जैतून पहाड़ से नीचे यरूशलेम में प्रवेश करता है, इसके बारे में लिखा गया है.
He used the gate in the same location.
उसने उसी जगह के फाटक का उपयोग किया.
This gate is called the Eastern Gate or the Golden Gate.
और इस फाटक को पूर्वी फाटक या फिर गोल्डन गेट यानी सुनहरा फाटक भी कहते हैं.
Just reminding you, the wall you see today with eight gates was constructed by Ottoman King Suleiman.
और आपको याद दिला दूं कि आज जो शहरपनाह और जो आठ फाटक आप देखते हैं, ये उस समय के ओटोमन का राजा राजा सुलेमान या सल्त उसने बनाई हुई ये शहरपनाह और फाटक हैं।
The magnificent in 1570 AD.
और उसने ये 1570 ईस्वी सन में बनाई है।
This was built in the same site where the first and the second temple stood.
और ये तो उसी जगह पर बनाए गए हैं जहां पर पहला भवन और दूसरा भवन था।
Historians tell us though he treated the Jews at the same time.
और इतिहासकार हमें बताते हैं कि हालांकि उसने यहूदी लोगों से उसी समय में इस तरह से व्यवहार किया,
but they were not allowed to worship.
लेकिन फिर भी उन्हें आराधना करने की अनुमति नहीं थी।
Today a mosque stands in that place where formerly the first and the second temple was built.
अब जब यहां जिस जगह पर पहला भवन और दूसरा भवन बनाया गया था, उसी जगह पर आज देखा जाए तो एक मस्जिद है।
And this is called the golden temple.
और उस मस्जिद को गोल्डन मॉस्क या सुनहरी मस्जिद कहते हैं।
In the present times,
वर्तमान के समय में
The Jews have no place to worship.
उस समय यहूदियों के पास में आराधना करने के लिए कोई जगह नहीं है।
So the earnest prayer is for a temple where they can go and worship.
और निश्चय अभी उनकी प्रार्थना, दिल की प्रार्थना यही है कि उनके पास में आराधना के लिए एक भवन हो जहां पर वो जाकर आराधना कर सके।
Today, if you visit Jerusalem, there is a place called the Wailing Wall.
आज अगर आप यरूशलेम में जाते हैं तो वहां पर एक जगह है जिसे Wailing Wall कहते हैं।
This part of the wall survived and remained when the city of Jerusalem was destroyed in 70 AD.
और ईस्वी सन 70 में जब ये पूरा यरूशलेम शहर नाश कर दिया गया, भवन नाश कर दिया गया, उस समय केवल यही एक दीवार थी जो अभी तक उस समय से लेकर अब तक बची है।
By the Roman Emperor Titus.
और रोमी सम्राट टाइटस ने इसे नाश कर दिया था।
This is a place where you can see all the Jews praying.
आप देखते हैं कि यही वो जगह है जहां पर सारे यहूदी प्रार्थना करती हैं।
Not only praying, we actually saw them weeping against the wall.
और केवल वो प्रार्थना ही नहीं करते हैं, लेकिन हमने सच में देखा है कि वो वहां पर उस दीवार को पकड़कर वो रोते रहते हैं।
Today we cannot imagine or predict how a temple will be built there for them.
और आज हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते और ना ही अनुमान लगा सकते हैं कि उनके लिए कैसे ये भवन वहां पर बनाया जाएगा।
In answer to all their prayers,
उनकी सारी प्रार्थनाओं के जवाब के रूप में।
We will go further and see another prophecy.
अब हम आगे बढ़कर एक और भविष्यवाणी को देखते हैं।
This time the prophet Ezekiel.
और इस समय हम यहजकेल भविष्यवक्ता से इस भविष्यवाणी को देखते हैं।
Now, if you remember in the Bible, Ezekiel was one of those who were taken to Babylon as captain with a second group of captives.
आपको याद होगा कि यहजकेल वो तो बेबीलोन में बंधवाई में जाने वाला जो दूसरा समूह था, उन समूह में से एक व्यक्ति था।
We all know from biblical history.
हम बाइबल के इतिहास से इस बात को जानते हैं।
Jehoiakim was appointed the king of Judah.
और उस समय Jehoiakim जो है, वो तो यहूदा के राजा के रूप में नियुक्त किया गया था।
By the Babylonians.
बेबीलोन के लोगों ने, बेबीलोन के राजा ने उसे यहाँ पर राजा के रूप में नियुक्त किया था।
Following the revolt and the death of his father Jehoiakim.
Jehoiakim जो कि उसके पिता थे, उसके बलवा करने के बाद में, उनकी हत्या होने के बाद में इसे राजा बनाया गया था।
All of a sudden, King Nebuchadnezzar changed his mind that he returned and besieged Jerusalem.
और फिर अचानक राजा नबूकदनेस्सर ने अपने मन को बदल दिया कि वो यरूशलेम जो है उसे वापस कर देगा, उसे फिर से अच्छा बनाएगा।
And he carried the king to Babylon as a captive.
और फिर वो जो है उस राजा को बेबीलोन में बंधवाई में लेकर जाता है।
This was the same time when Ezekiel was taken captive.
ये तो बिल्कुल वही समय जिस समय यहजकेल को भी बंधवाई में ले जाया गया था।
Just to keep your mind informed, Daniel was taken captive later before the destruction of the temple by Nebuchadnezzar.
और आपको मैं याद दिला दूं कि ये जो है, ये नबूकदनेस्सर के द्वारा इस भवन को नाश किए जाने के पहले दानियल जो है वो भी बंधवाई में ले जाया गया था।
According to the historians, they say that Ezekiel was taken 15 years before this.
और जैसे इतिहासकार कहते हैं उनके अनुसार इसे यहजकेल जो है उसके इन सारी बातों के 15 साल पहले वहां पर बंधवाई में ले जाया गया।
So it makes Ezekiel senior to Daniel.
तो इसका मतलब ये है कि यहजकेल जो है ये तो दानियल का सीनियर है।
During this time in exile, Ezekiel wrote his prophecies.
और यहाँ पर बंधवाई में रहते हुए यहजकेल ने अपनी सारी भविष्यवाणी की बातों को लिखा.
Let us now see the prophecies of Ezekiel.
अब आइए यहजकेल की भविष्यवाणी को हम देखते हैं.
It will be good for you to follow it in your Bible also with us.
और यह आपके लिए अच्छा होगा कि आप बाइबल में इन बातों को हमारे साथ में देख ले.
The book of Ezekiel has 48 chapters.
यहजकेल की किताब में कुल मिलाकर 48 अध्याय हैं.
And in the 44th chapter, in the second verse, Ezekiel writes.
और 44वें अध्याय वचन 2 में यहाँ पर यहजकेल लिखता है.
And the Lord said to me.
प्रभु ने मुझसे कहा.
This gate shall be shut.
तब यहोवा ने मुझसे कहा ये फाटक बंद रहे.
It shall not be opened.
और ये खोला न जाए.
And no man shall enter by it.
कोई इससे होकर भीतर जाने न पाए.
Because the Lord God of Israel has entered by it.
क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है.
Therefore it has to be shut.
इस कारण ये बंद रहे.
Before the gate closed.
ये फाटक बंद होने के पहले.
Jesus entered this gate when coming from the Mount of Olives.
जब यीशु जैतून पहाड़ से नीचे आया, वो इसी फाटक में से होकर प्रवेश किया.
So you may still ask a question: When was this gate shut?
तो शायद आप ये सवाल पूछे कि ये जो फाटक है, ये कब बंद कर दिया गया?
And how was the prophecy fulfilled?
और इसके बारे में जो भविष्यवाणी थी, वो भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई?
As I mentioned earlier.
और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है.
Suleiman the Magnificent built the wall. Later he was informed that Jesus Christ, the King of Jews, would enter.
सुल्तान जो सुलेमान था. जो कि मैग्निफिक बड़ा सुलेमान था 15वीं सदी का, उसे जब ये बताया गया कि यीशु मसीह जो है वो इसी फाटक के द्वारा यरूशलेम में विजयी प्रवेश करेगा, तो उसने इस फाटक को बंद कर दिया.
He would enter through this eastern gate at the end of the world, that is the second coming.
और उसे बताया गया था कि संसार या जगत के अंत में, यानी उसके दूसरे आगमन के समय, यीशु मसीह इसी पूर्वीय फाटक में से प्रवेश करेगा.
When he heard this biblical prophecy,
और जब उसने इस बाइबल की भविष्यवाणी को सुना.
Probably from the senior Jewish people in 1542 AD.
शायद हो सकता है कि ईसवी सन 1542 के दरमियान उसने जो बुजुर्ग यहूदी लोग थे, उनकी ओर से ये भविष्यवाणी सुनी होगी.
He sealed the eastern gate.
तो उसने पूरी फाटक को बंद कर दिया.
It is believed he did so to prevent the second coming of the Jewish king from gaining entrance into Jerusalem.
और ये इसीलिए कि उसने ये सोचा कि यरूशलेम में और उसने ये इसीलिए किया क्योंकि उसने सोचा कि यरूशलेम में यहूदी राजा के दूसरे आगमन के समय वो रुकावट डाल सकेगा.
We see he closed it with a wall of 16 feet thickness.
हम ये देखते हैं कि उसने 16 फीट चौड़ी दीवार के साथ में इसे पूरी तरह बंद कर दिया.
You can imagine how strongly he would have secured the gate.
आप इस बात को निश्चित कर सकते हैं कि उसने इस फाटक को कितनी मजबूती से बंद करके रखा है.
This eastern gate has remained sealed for the last 500 years.
और पिछले 500 साल से ये जो पूर्वी फाटक है, वो अभी भी बंद है.
The Sultan built it at a time when a 16 feet wall seemed impossible to break.
और सुल्तान ने ये उस समय बनाया जबकि वहां पर माना जाता था कि 16 फीट चौड़ी जो दीवार है उसे तोड़ना नामुमकिन है.
Today if you visit Jerusalem you can see this eastern gate.
और अगर आज आप यरूशलेम जाते हैं तो आप वहां पर इस पूर्वी फाटक को देख सकते हैं.
Then Ezekiel in 46:12 says.
और फिर यहजकेल अध्याय 46 वचन 12 में इस तरह से कहता है.
Now when the prince makes a voluntary burnt offering.
फिर जब प्रधान होम बलि या मेल बलि को स्वेच्छा बलि करके यहोवा के लिए तैयार करे.
Or a voluntary peace offering to the Lord.
मेल बलि या होम बलि के रूप में स्वेच्छा बलि के लिए परमेश्वर के सामने तैयार करें.
The gate that faces towards the east shall be opened for him.
तब पूर्वी मुखी फाटक उसके लिए खोला जाए.
The prince mentioned here is seen as Christ himself at the second coming.
और यहाँ पर जो प्रधान बताया गया है, ये तो स्वयं दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में है.
The Prince of Peace will return to the Mount of Olives.
और जो शांति का राजकुमार है, वो जैतून के पहाड़ पर वापस आएगा.
And enter Jerusalem through the open gate.
और खुले फाटक से होकर वो यरूशलेम में प्रवेश करेगा.
This is told by Zechariah in 14:4.
और देखिए जकरिया अध्याय 14 वचन 4 में इसी के बारे में बताया गया है,
And shall stand in that day upon the Mount of Olives,
और वो जैतून के पहाड़ पर उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा,
which is before Jerusalem on the east,
जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है।
So the eastern gate that now remains sealed will open when Jesus comes again for the second time.
यानी ये जो पूर्व फाटक है जो अभी बंद है वो यीशु के दूसरे आगमन के समय खोल दिया जाएगा।
Now the question is,
अब सवाल ये है,
How does one interpret the coming and the going of God's glory?
कब कैसे इस बात का कोई अर्थ लगा सकेगा कि परमेश्वर की महिमा आती है और जाती है?
And the closing of the eastern gate in Ezekiel's prophecy.
और यहजकेल की जो भविष्यवाणी उसके अनुसार ये जो पूर्वी फाटक है जिसे बंद कर दिया गया उसके बारे में।
In chapter 10, prophet Ezekiel sees the glory of the Lord.
और यहजकेल अध्याय 10 में भविष्यवक्ता यहजकेल परमेश्वर की महिमा को देखता है।
Departing from the temple.
जो कि भवन से निकल जाती है।
Because of the sins of the people.
लोगों के पाप के कारण।
This is the first temple destroyed by the Babylonians.
और ये तो वो पहला भवन है जिसे बेबीलोन के लोगों ने नाश कर दिया था।
In chapter 43, the prophet sees the glory return to the temple.
और अध्याय 43 में ये भविष्यवक्ता देखता है कि वो महिमा वापस उस भवन में आती है।
This is the new enlarged temple of the millennium kingdom.
और ये तो नया और बड़ा किया गया वो भवन है जो कि मिलेनियम के राज्य के दौरान होगा।
In chapter 44, the prophet is informed the eastern gate is to remain shut because the Lord God of Israel entered through it.
और यहाँ पर यहजकेल अध्याय 44 में भविष्यवक्ता को बताया गया है कि ये जो पूर्वी फाटक है वो तो बंद रहेगा क्योंकि इसराइल का प्रभु परमेश्वर उसी में से प्रवेश करेगा।
The eastern gate would only open to allow for priestly duties of the prince as mentioned in Ezekiel.
यहजकेल में जैसे बताया गया है कि ये जो पूर्वी फाटक है वो तो केवल याजकों के काम के लिए और उनके प्रवेश के लिए ही खोला जाएगा।
In chapter 46.
अध्याय 46 में इसके बारे में बताया गया है।
And this definitely refers to the second coming of the Lord Jesus Christ.
और ये निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताता है।
Many Old Testament prophecies foretell the ultimate triumph of Jesus Christ.
पुराने नियम की बहुत सी जो भविष्यवाणी है वो यीशु मसीह के उस अटल विजय के बारे में बताती है,
which will take place in the second advent.
जो कि इस दूसरे आगमन के समय में होने वाली है।
In Matthew 24:36-40.
मत्ती अध्याय 24 वचन 36 से लेकर वचन 40 तक।
No one knows about the date or the hour.
ये बताता है कि कोई भी उस समय के बारे में उस घड़ी के बारे में नहीं जानता है।
Not even the angels in heaven.
और ना ही स्वर्ग के स्वर्गदूत इसे जानते हैं।
Nor the son.
और ना ही पुत्र इसे जानता है।
But only the father.
लेकिन केवल पिता इसे जानता है।
Therefore keep watch.
और इसलिए आप सचेत रहें।
Because we do not know on what day our Lord Jesus will come.
क्योंकि हम नहीं जानते कि किस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वापस आ जाएगा।
You must be ready.
आपको तैयार रहना है।
Because the Son of Man will come at an hour you do not expect him.
क्योंकि मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आएगा जिस समय आपने उसकी अपेक्षा भी नहीं की है।
Acts chapter 1 verse 7 says.
प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 7 ये कहता है।
And he said unto them.
उसने उनसे कहा।
It is not for you to know the times or the seasons.
उन समयों या कालों को जानना ये तुम्हारे वश में नहीं है।
Which the Father has put into his own power.
जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा ये तुम्हारा काम नहीं है।
On many occasions.
और देखिए बहुत सी जगह पर।
People have claimed dates of his coming.
लोगों ने जो है उसके आने की तारीख के बारे में वहाँ पर दावे किए हैं।
But the Bible says no one knows.
लेकिन बाइबल कहती है कि इसे कोई नहीं जानता।
Scriptures nowhere encourages us to try and to determine the date.
और ना ही वचन हमें कभी प्रोत्साहित करते हैं कि हम उन तारीखों को जानने के बारे में कोशिश करते चले जाएं।
But rather we have to keep watch.
लेकिन इसके बजाय हमें खुद सावधान रहना है।
Because we do not know on which day our Lord will come.
क्योंकि हम स्वयं नहीं जानते कि किस दिन हमारा प्रभु यीशु आएगा।
So just as Jesus commanded us,
और जैसे कि यीशु ने हमें आज्ञा दी है,
let us watch and pray.
तो आइए हम सचेत हो और प्रार्थना करते रहें।
As we continue waiting for the second coming of our Lord and Savior.
जैसे कि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु के उस दूसरे आगमन की राह देखते चले जा रहे हैं।
Now you have enough information to follow in your Bible, and I believe you are going to be excited about the second coming, which is the very much the current issue.
और निश्चय मैं जानती हूँ कि आपके बाइबल में इसके बारे में बहुत सी जानकारी है, और मैं इस बात को भी जानती हूँ कि दूसरा आगमन अभी इस वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण ऐसा मुद्दा हो गया है.
And I pray to God the eyes of your heart will be enlightened that you will see truly he is coming soon.
और मैं निश्चय प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जो आँखें वो ज्योतिर्मय हो जाएं और उसके जल्दी लौटने की आप राह देखती जाएं.
May God bless each and every one of you.
परमेश्वर आप में से हर एक व्यक्ति को आशीष दे.
Amen.
Amen.
Hallelujah. Hallelujah, al yom shemeir. Hallelujah, al ma shehaya, u ma sheot lo.